नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण, सहयोग, प्रवासन और गतिशीलता सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और फिनलैंड इस बात पर सहमत है कि केवल सैन्य संघर्ष से किसी भी मुद्दे का नहीं हो सकता है समाधान। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। उपमुख्यमंत्री चाउना मेन 10 मार्च को पेश करेंगे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पुलिस ने वेस्ट बंगाल के एक पर्यटक को बुद्ध पार्क से चोरी करने के आरोप में किया गिरफ्तार। पार्क में बौद्ध भिक्षु ने आरोपी को क्षमा करते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराने का किया फैसला। नेपाल में नई संसद के चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के संयुक्त सैन्य हमलों के बीच ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 19वां चरण शुरू किया। इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने की दी चेतावनी। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में सेमीफाइनल में आज शाम भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और फिनलैंड के बीच आज नई दिल्ली में पर्यावरण, सहयोग, प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टू के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप, दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स, अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और फिनलैंड इस बात पर सहमत है कि केवल सैन्य संघर्ष से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत और फिनलैंड कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। श्री मोदी ने उल्लेख किया है कि भारत यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश तथा तकनीकी सहयोग और मजबूत होगा।
2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार है।
इस बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टूब ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है और विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से भी एक है।
मुझे कहना होगा कि जब आप यह कहते हैं कि आप यहाँ दो बड़ी लोकतांत्रिक देशों के रूप में खड़े हैं, तो मैं आपकी कूटनीतिक क्षमता को सलाम करता हूँ। इसका मुख्य संदेश है कि हम समान मूल्यों को साझा करते हैं। मैं आपके नेतृत्व के लिए आपको बधाई भी देना चाहूँगा। भारत स्पष्ट रूप से दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब भारत यूरोप का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन चुका है।
विदेश मंत्री डॉक्टर ए जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रपति स्तूप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि ये फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से भारत फिनलैंड संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में 11वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
रायसीना डायलॉग भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है, जो साल 2016 से हर वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान 110 देशों के लगभग 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और पूर्व सरकार के प्रमुख, सांसद, सैन्य कमांडर और उद्योग जगत के प्रमुख लोग शामिल होंगे। संवाद के दौरान प्रतिभागी 6 प्रमुख विषयों पर अलग अलग सत्र में चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और रणनीतिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दीपेंद्र कुमार,
रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण में भाग लेने के लिए श्रीलंका के विदेश मामलों के मंत्री विजिथा हैरत आज नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ और बहुआयामी साझेदारी है जो आपसी संबंधों पर गहराई से आधारित है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है और आगामी 12 मार्च तक जारी रहेगा, जिसके तहत 5 बैठकें आयोजित होंगी। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, जिनके पास राज्य की फाइनेंस पोर्टफोलियो भी है, आगामी 10 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान पेश करेंगे। बजट पर चर्चा एवं पारित होने हेतु 11 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट के पहले दिन कल सरकारी बिल पेश किए जाएंगे, जिनमें 7 अरुणाचल प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण बदलाव निषेध संशोधन विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश शिक्षकों तथा स्थानांतरण और पोस्टिंग विनियमन और प्रबंधन विधेयक 2026 और अरुणाचल प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 शामिल है। इस बीच विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव के लिए एक संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। तवांग पुलिस ने बुधवार को वेस्ट बंगाल के एक पर्यटक को बुद्धा पार्क से चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इंसपुत पर कार्रवाई करते हुए तवांग पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने आरोपी का तुरंत पता लगाते हुए चोरी का सामान बरामद किया, जिसमें एक मध्यम आकार की बुद्ध की मूर्ति, 2 तिंगशा झांझ और 2 धातु के लैंप शामिल है। हालांकि पार्क की देखरेख करने वाले बौद्ध भिक्षु ने आरोपी को क्षमा करते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करने का फैसला किया है। इस बीच पुलिस की तुरंत कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों ने उनकी सराहना की। नेपाल में नई संसद के चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में चुनाव के उत्साहपूर्ण संचालन और प्रसन्नता व्यक्त की। अन्य राजनीतिक नेताओं में राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी RSP के रवि लामिछाने ने चिचुपेटी में और RSP के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालिन ने तिनकुने में अपना वोट डाला। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आज नेपाल में दोपहर तक 18% मतदान हुआ। पूरे नेपाल में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। प्रत्येक मतदाता को 2 मतपत्र मिल रहे हैं। पहला मतपत्र फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव के लिए है और दूसरा मतपत्र आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए दिया जा रहा है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए उम्मीदवार को चुनते हैं और प्रोपोर्शनल प्रणाली के तहत मतदाता उस राजनीतिक दल पर मुहर लगाते हैं जिसको वो देश के केंद्र में नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं। श्वेता सिंह।
इस बीच ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल और अमेरिका ईरान के शासन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाएगा। एक रिपोर्ट।
ईरान की ये चेतावनी इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कार्ड्स के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता इसराइल के निशाने पर होंगे। ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 19वें चरण के तहत मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इसराइली रक्षा बलों ने कहा कि ईरान से इसराइल की ओर कई मिसाइलें दागी गयी। इसराइली रक्षा बलों का कहना है कि उसके रक्षा तंत्र खतरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और गृह मोर्चा कमान से संबंधित क्षेत्रों में मोबाइल फोन पर सीधे प्रारंभिक निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष।
इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इसराइली रक्षा बलों ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े से जुड़े कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। अमेरिकी वायुसेना ईरान पर लगातार भारी हवाई हमले कर रही है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि उनके बलों ने 20 से अधिक ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका और इसराइल मजबूत स्थिति में है। उधर इसराइल की वायुसेना ने ईरान पर फिर से हमला किया शुरू कर दिया है। इसराइल के रक्षा बलों ने तेहरान में ईरानी शासन की बुनियादी ढांचे का निशाना बनाया है। इससे पहले इसराइल की वायुसेना ने ईरान में इस्फहान को और काम में मिसाइल लॉन्च कर रक्षा प्रणाली पर हमला किया था। इसराइल ने लेबनान में कई कमानों केंद्रों पर भी हमले किए हैं। उसका कहना है कि कहा है कि इसमें एक केंद्र का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की वायु इकाई कर रही थी। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में कल रात न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।